एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे वचनों को तेरे संवाद को समझने सके और हमें तेरा रास्ता में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा विशेष रूप से दे कि मैं तेरा संवाद को अच्छी तरह से तेरे लोगों को बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है सुधार। परंपरा पर आधारित अशास्त्रीय सिद्धांत, असंतुष्टों का निरंतर उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और कई पादरियों की आध्यात्मिक गिरावट उन प्रमुख कारकों में से थे जिनके कारण लोगों को स्थापित कलीसिया के भीतर सुधारों के लिए पुकार लगानी पड़ी। ये गैर बाइबलीय सिद्धांतों के उदाहरण हैं जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार देने में मदद की और अभी भी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक कलीसिया को अलग करते हैं। पहला है, पृथ्वी पर कलीसिया का मुखिया मसीह का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का दावा है कि केवल रोम का बिशप ही पृथ्वी पर मसीह का प्रतिनिधि है और कलीसिया का दृश्यमान प्रमुख है। कलीसिया नेतृत्व के बाइबल दृष्टिकोण के विपरीत यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि मसीह ने पत्रस को कलीसिया का दृश्य प्रमुख बनाया और पोप पत्रस का उत्तराधिकारी है। दूसरा, कलीसिया और उसके मुखिया की अचूकता। जिस सिद्धांत ने रोम की कलीसिया की प्रतिष्ठा और प्रभाव में सबसे अधिक योगदान दिया वह था इसकी अचूकता। कलीसिया ने दावा किया कि उसने कभी गलती नहीं की थी और ना कभी करेगी। यह इस शिक्षा को निम्नलिखित तर्कों पर आधारित करती है जिसे कोई बाइबल समर्थन नहीं मिलता है। क्योंकि कलीसिया दिव्य है, इसकी अंतर्निहित गुणों में से एक अचूकता है। इसके अलावा चूंकि परमेश्वर ने इस दिव्य कलीसिया के माध्यम से सभी अच्छी इच्छा वाले लोगों को स्वर्ग ले जाने का इरादा किया था, वह विश्वास और नैतिकता सिखाने में अचूक होनी चाहिए। तब मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उसे सभी त्रुटि से सुरक्षित रखेगा। तार्किक परिणाम जो मनुष्यों की बुनियादी भ्रष्टता को नकारता है यह है कि कलीसिया के मुखिया को भी अचूक होना चाहिए। तदनुसार कैथलिक साहित्य ने अपने मुखिया के लिए दैविक विशेष अधिकारों का दावा किया। तीसरा, मसीह के महायाजकीय मध्यस्थ सेवकाई का ढकना। जैसे जैसे रोम की कलीसिया का प्रभाव बढ़ता गया, विश्वासियों का ध्यान स्वर्ग में महायाजक के रूप में मसीह के नित्य मध्यस्थ कार्य से हटाकर पुराने नियम की पवित्र सेवाओं के निरंतर दैनिक बलिदानों का प्रतिरूप एक सांसारिक याजकता की ओर स्थानांतरित कर दिया गया जिसका मुखिया रोम में था। पापों की क्षमा और अनंत उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करने के बजाय विश्वासियों ने पोप याजकों और धर्म अध्यक्षों पर अपना विश्वास रखा। सभी विश्वासियों की याजकता के नए नियम की शिक्षा का विरोध करते हुए पादरियों की क्षमा की सेवकाई को अब उद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। स्वर्ग में मसीह की याजकीय सेवकाई जहां वह लगातार अपने प्रायश्चित बलिदान के लाभों को पश्चाताप करने वाले विश्वासियों पर लागू करता है, प्रभावी रूप से तब नकारा गया जब कलीसिया ने प्रभु भोज के लिए मांस या सामूहिक भोज को प्रतिस्थापित किया। प्रभु भोज के विपरीत एक सेवा जिसे यीशु ने अपनी मृत्यु के उपलक्ष्य में और अपने आने वाले राज का पूर्वाभास करने के लिए स्थापित किया। कैथलिक कलीसिया यह दावा करती है कि यह मांस सामूहिक भोज एक मानव याजक द्वारा परमेश्वर के लिए मसीह का रक्तहीन बलिदान है। क्योंकि मसीह को फिर से चढ़ाया जाता है जैसा कि उसे कलवरी पर चढ़ाया गया था, मांस सामूहिक भोज विश्वासियों और मृतकों के लिए विशेष अनुग्रह लाने के लिए जाना जाता था। पवित्र शास्त्र से अनभिज्ञ केवल एक मानव याजकता द्वारा संचालित मांस सामूहिक भोज को जानते हुए बहुसंख्यकों ने हमारे मध्यस्थ यीशु मसीह तक सीधी पहुंच का आशीर्वाद खो दिया। इस प्रकार प्रतिज्ञा और निमंत्रण, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, इब्रानियों 4:16 को मिटा दिया गया। चौथा, अच्छे कार्यों का गुणोत्कृष्ट स्वभाव। प्रचलित दृष्टिकोण की अच्छे कार्य करने से एक व्यक्ति उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योग्यता प्राप्त कर सकता है कि विश्वास बचा नहीं सकता, नए नियम की शिक्षा का खंडन करता है। कैथलिक कलीसिया ने सिखाया कि अच्छे कार्य जो पापी के हृदय में डाले गए अनुग्रह के परिणाम थे, वे गुणोत्कृष्ट थे, जिसका अर्थ था कि उन्होंने एक व्यक्ति को उधार का न्यायपूर्ण दावा दिया। वास्तव में कोई व्यक्ति उधार के लिए जितना आवश्यक है उसे अच्छे कार्य कर सकता था, जैसा कि संतों के मामले में था, और इस प्रकार अतिरिक्त गुण जमा कर सकता है। इन अतिरिक्त गुण का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कलीसिया ने माना कि पापियों को उनके दिलों में डाली गई धार्मिकता के आधार पर धर्मी ठहराया गया था। अच्छे कार्यों ने एक व्यक्ति को धर्मी ठहराए जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुणोत्कृष्ट कार्यों ने शुद्धि स्थल के सिद्धांत में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यह दावा करता है कि जो लोग पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, उन्हें स्वर्ग की खुशियों में प्रवेश करने से पहले अपने पापों के लिए शुद्धि स्थल में अस्थाई दंड देना चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं और अच्छे कार्यों के द्वारा जीवित विश्वासी शुद्धि स्थल में लोगों की पीड़ा की अवधि और तीव्रता को कम कर सकते हैं। पांचवा, प्रायश्चित और क्षमादान पत्र का सिद्धांत। प्रायश्चित वह संस्कार है जिसके द्वारा मसीही बपतिस्मा के बाद किए गए पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। पापों की यह क्षमा एक याजक के क्षमादान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि इसे प्राप्त किया जा सके, मसीहों को अपने विवेक की जांच करनी चाहिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर को कभी भी नाराज नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। तब उन्हें अपने पापों को याजक के सामने अंगीकार करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। याजक द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य, हालांकि इस प्रायश्चित ने पापियों को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया, उन्हें अभी भी इस जीवन में या शुद्धि स्थल में अस्थाई दंड भुगतना पड़ेगा। इस सजा को भुगतने के लिए कलीसिया ने क्षमादान पत्र की स्थापना की, जो अस्थाई दंड की छूट प्रदान करता था, जो अपराध बोध से मुक्त होने के बाद भी पाप के कारण बना रहता था। क्षमादान पत्र जो जीवन और शुद्धि स्थल में दोनों को लाभान्वित कर सकता था, पश्चाताप और निर्धारित अच्छे कर्मों के प्रदर्शन पर अक्सर कलीसिया को पैसे के भुगतान के रूप में दिया जाता था। यह शहीदों, संतों, प्रेरितों और विशेष रूप से यीशु मसीह और मरियम के अतिरिक्त गुण थे जिन्होंने क्षमादान पत्र को संभव बनाया। उनके गुण गुणों के खजाने में जमा किए गए थे और उन विश्वासियों के लिए हस्तांतरणीय थे जिनके खाते में कमी था। पोप के पास पत्रस के कथित उत्तराधिकारी के रूप में इस खजाने की चाबियों का नियंत्रण था और लोगों को अस्थाई दंड से उन्हें खजाने से जमा क्रेडिट देकर मुक्त कर सकता था। और छठा है, परम अधिकार कलीसिया में रहता है। सदियों के दौरान स्थापित कलीसिया ने कई मूर्ति पूजक विश्वासों, पवित्र दिनों और प्रतीकों को अपनाया। जब इन घिनौने कामों के खिलाफ आवाजें उठी तो रोम की कलीसिया ने बाइबल की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार ग्रहण कर लिया। कलीसिया ने तर्क किया कि दिव्य सत्य के दो स्रोत होते हैं, पहला पवित्र शास्त्र और दूसरा कैथलिक परंपरा, जिसमें कलीसिया के पिता, संस्थापकों के लेखन, कलीसिया परिषदों के फरमान, स्वीकृत मत मान्यताएं और कलीसिया की विधियां शामिल थी। जब भी कलीसिया के सिद्धांतों को परंपरा द्वारा ना कि पवित्र शास्त्र द्वारा समर्थित किया गया, परंपरा ने प्राथमिकता ली। सामान्य विश्वासियों के पास उन सिद्धांतों की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं था जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में प्रकट किया था। वह अधिकार केवल कैथलिक कलीसिया में रहता था। तब एक नए दिन की सुबह होती है। 14वीं शताब्दी में जॉन विक्लिफ ने न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे मसीही जगत में कलीसिया के सुधार का आह्वान किया। उस समय जब बाइबल की कुछ ही प्रतियां मौजूद थी, उसने पूरी बाइबल का पहला अनुवाद अंग्रेजी में प्रदान किया। केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार की उसकी शिक्षाओं और केवल पवित्र शास्त्र ही अचूक है ने प्रोटेस्टेंट सुधार की नींव रखी। सुधार के सुबह के सितारे के रूप में उसने मसीह की कलीसिया को बुत परस्ती की बंधन से मुक्त करने की कोशिश की जिसने इसे अज्ञानता में जकड़ लिया था। उसने एक आंदोलन का उद्घाटन किया जो व्यक्तिगत दिमाग को मुक्त करने और पूरे राष्ट्र को धार्मिक त्रुटि के चंगुल से मुक्त करने के लिए था। विक्लिफ के लेखन ने हस, जेरोम, लूथर और कई अन्य लोगों की आत्माओं को छुआ। मार्टिन लूथर उग्र, आवेगी, अडिग, शायद सुधार का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व था। किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक वह लोगों को पवित्र शास्त्र और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के महान सुसमाचार सत्य की ओर वापस ले गया, जबकि उसने कर्मों के द्वारा उद्धार के खिलाफ आवाज उठाई। यह घोषणा करते हुए कि विश्वासियों को शास्त्रों के अलावा कोई अधिकार स्वीकार नहीं करने चाहिए, लूथर ने लोगों की आंखों को ऊपर की ओर मानवीय कार्यों, याजकों और प्रायश्चित से उनके एकमात्र मध्यस्थ और उद्धारकर्ता के रूप में मसीह की ओर मोड़ दिया। उसने कहा, मानव कार्यों से पाप करने के अपराध बोध को कम करना या उसके दंड से बचना असंभव है। केवल परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और मसीह में विश्वास ही पापियों को बचा सकता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से दिया गया एक उपहार है। उसके अनुग्रह को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए मनुष्य के लिए आशा हो सकती है क्षमादान पत्र के कारण नहीं, बल्कि एक क्रूस पर चढ़ाए गए उद्धारकर्ता के बहाए गए रक्त के कारण। सदियों से जमा अवशेषों के ढेर के नीचे दबे हुए खजाने को खोजने वाले एक पुरातत्व अभियान की तरह सुधार ने लंबे समय से भूले हुए सत्य को उजागर किया। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सुसमाचार का महान सिद्धांत फिर से खोजा गया, जैसा कि एक बार का सभी के लिए यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान और उसकी सर्व पर्याप्त मध्यस्थ याजकता के लिए एक नई सराहना थी। कई गैर बाइबल शिक्षाएं जैसे कि मृतकों के लिए प्रार्थना, संतों और अवशेषों की पूजा, मांस सामूहिक भोज का उत्सव, मरियम की पूजा, शुद्धि स्थल, प्रायश्चित, पवित्र जल, याजक की ब्रह्मचार्य माला, न्यायिक जांच, तत्व परिवर्तन, भोज की रोटी और दाखरस का यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाने का सिद्धांत, बीमारों के अभिषेक का संस्कार और परंपरा पर निर्भरता को अस्वीकार कर दिया गया और त्याग दिया गया। प्रोटेस्टेंट सुधारक पोप प्रणाली को पाप का पुरुष, अधम का रहस्य और दानियल के छोटे सिंह के रूप में पहचानने में लगभग एक मत थे। वह सत्ता जिसे प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14 और 13 का 5 के 1260 वर्षों के दौरान दूसरे आगमन से पहले परमेश्वर के सच्चे लोगों को सताना था, विश्वास और नैतिकता के आदर्श के रूप में केवल बाइबल और बाइबल का सिद्धांत प्रोटेस्टेंट के लिए आधार बन गया। सुधारकों ने सभी मानवीय परंपराओं को शास्त्र के अंतिम और उच्च अधिकार के अधीन माना। धार्मिक आस्था के मामलों में पोप, परिषद, कलीसिया के पिता, राजा या विद्वान का विवेक पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं था। दरअसल मसीही जगत अपनी नींद से जागने लगा था और अंततः कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई। आज हमें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। हमारे विवेक को किसी मनुष्य द्वारा या किसी शक्ति द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। यीशु ने कहा, यदि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। आइए हम यीशु मसीह के पास आए कि वह हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करे और हमें पाप से मुक्त करे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हमें तेरा पवित्र आत्मा से भर दे पिता। हम तेरे पास आते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह से हमारे पापों का क्षमा प्रदान कर और हमें तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ से नया जीवन प्रदान कर और हमें तेरा रास्ता में चलने के लिए मदद कर कि हम सही और शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत कर सकें। हम सबों को आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।